ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीयोत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी ग्रंथ श्रीमद् भागवतम छठा स्कंद पांचवा अध्याय श्लोक संख्या 44। ये इस अध्याय का अंतिम श्लोक है और अध्याय का नाम है प्रजापति दक्ष द्वारा नारद मुनि को शाप।
शुक उवाच प्रतिजग्राह तद्बाणम् नारदः साधु सम्मतः एतावान् साधुवादो हि तितिक्षेतेश्वरः स्वयं श्रीशुक उवाच प्रतिजग्राह तद्बाणम् नारद साधु सम्मता एतावान् साधुवादो हि तितिक्षेतेश्वर स्वयं श्रीशुक उवाच प्रतिजग्राह तद्बाणम् नारद साधु सम्मता एतावान् साधुवादो हि तितिक्षेतेश्वर स्वयं। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। श्री शुका उवाच श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा प्रति जग्राह स्वीकार किया बाणम तथास्तु नारद नारद मुनि साधु सम्मता जो माने हुए साधु हैं एतावान इतना साधुवादः साधु पुरुष की प्रशंसा ही निसंदेह तितिक्षेत वह सहन कर सके ईश्वरा यद्यपि प्रजापति दक्ष को शाप देने में समर्थ स्वयं स्वयं। अनुवाद श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा हे राजा चूंकि नारद मुनि माने हुए साधु पुरुष हैं अतः जब प्रजापति दक्ष ने उन्हें शाप दिया तो उन्होंने उत्तर दिया तद्बाणम ठीक तुमने जो भी कहा उत्तम है मैं इस शाप को स्वीकार करता हूँ। वे चाहते तो उलटकर प्रजापति दक्ष को शाप दे सकते थे किंतु उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की क्योंकि वे सहिष्णु तथा दयालु साधु थे। तात्पर्य जैसा कि श्रीमद् भागवतम 3:5:21 में कहा गया है तितिक्षवा कारुणिका सुहित सर्वदेहिना अजात शतवा शांता साधवा साधु भूषणा। साधु के लक्षण है कि वह सहिष्णु दयालु तथा सभी जीवों के प्रति मैत्रीपूर्ण होता है उसके कोई शत्रु नहीं होता वह शांत होता है वह शास्त्रों का पालन करता है और उसके सारे गुण उद्दात होते हैं। चूंकि नारद मुनि सर्वाधा कुछ साधु या भक्त हैं अतएव उन्होंने प्रजापति दक्ष का उद्धार करने हेतु उस शाप को मौन भाव से सह लिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने सारे भक्तों को इसी सिद्धांत की शिक्षा दी है तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि मनुष्य को चाहिए कि अपने को रास्ते के तिनके से भी तुच्छ सोचकर मन में विनम्र भाव से भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करे। उसे वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना चाहिए, मिथ्या प्रतिष्ठा के भाव से रहित होना चाहिए तथा अन्यों को आदर देने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसे मनोदशा में वह भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन निरंतर कीर्तन कर सकता है। जो व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेशों का पालन करते हुए संसार भर में या सारे ब्रह्मांड में भगवान की महिमा का प्रचार करता है, उसे घास या तिनके से भी अधिक विनम्र तथा वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना चाहिए, क्योंकि प्रचारक आलसी जीवन नहीं बिता सकता। निस्संदेह प्रचारक को अनेक अवरोधों का सामना करना पड़ता है। वह कभी कभी न केवल शापित होता है अपितु उसे शारीरिक चोटें भी सहनी पड़ती हैं। उदारतम जब नित्यानंद प्रभु जगाई तथा मधाई नामक दो उच्चके भाइयों के पास कृष्ण भानामृत का प्रचार करने गए तो उन्होंने उन्हें चोट पहुंचाई जिससे उनके सर से खून बहने लगा था। फिर भी उन्होंने सहिष्णुता पूर्वक उन दोनों उच्चकों का उद्धार किया जिससे वे पूर्ण वैष्णव बन गए। प्रचारक का यही कर्तव्य है। जीसस क्राइस्ट को तो शूली पर भी चढ़ना पड़ा था, अतएव नारद मुनि को दिया गया शाप अधिक आश्चर्यप्रद नहीं था और उन्होंने उसे सह लिया। अब यह पूछा जा सकता है कि नारद मुनि प्रजापति दक्ष के सम्मुख क्यों रुके रहे और उनके सारे दोषारोपों शापों को सहते रहे? क्या यह दक्ष के उद्धार के लिए था? उत्तर है हाँ। शिलाशिष्ट विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि प्रजापति दक्ष द्वारा अपमानित होने के बाद नारद मुनि को वहां से तुरंत चले जाना चाहिए था, किंतु वे जानबूझकर दक्ष के कटु शब्दों को सुनने के लिए रुके रहे जिससे दक्ष का क्रोध शांत हो जाए। प्रजापति दक्ष कोई सामान्य व्यक्ति ना थे, उन्होंने अनेक पुण्य कर्मों से फल संचित कर रखे थे, इसलिए नारद मुनि को आशा थी कि शाप देने के बाद दक्ष तुष्ट होकर तथा क्रोध से मुक्त होकर अपने दुर्व्यवहार के लिए पश्चाताप करेंगे और इस तरह वैष्णव बनने का अवसर प्राप्त करेंगे और उनका उद्धार हो सकेगा। जब जगाई तथा मधाई ने नित्यानंद का अपमान किया तो नित्यानंद सहनशील बनकर खड़े रहे, इसलिए दोनों भाई उनके चरणों पर गिर पड़े और पश्चाताप किया। फलस्वरूप बाद में ये पूर्ण वैष्णव
श्री श्रीराधा राधिका रमन जी की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय।
हरे कृष्णा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है और प्रभुपाद जी का तात्पर्य बहुत ही उत्साहवर्धक है। ये अध्याय का आखिरी श्लोक है और इसमें सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि किस तरह से दक्ष प्रजापति और नारद मुनि की वार्तालाप समाप्त हुई और किस तरह से नारद मुनि को शाप प्राप्त हुआ। आप में से कुछ भक्त लोग तो निरंतर आ रहे हैं, इस कथा में भाग ले रहे हैं। जो भक्त लोग नियमित रूप से नहीं आते तो उनके ज्ञान के लिए प्रजापति दक्ष के 10,000 पुत्र से पहले प्रजापति दक्ष ने भगवान से प्रार्थनाएं की थी, हंस को ये प्रार्थनाएं जो कि शास्त्रों में उदित हैं, और उन प्रार्थनाओं से प्रसन्न होकर भगवान ने उनको दर्शन दिए थे और आशीर्वाद दिया था, वर दिया था कि अब वो प्रजा की उत्पत्ति कर पाएंगे। तो उन्होंने संतानों की उत्पत्ति की और एक साथ 10,000 पुत्रों को उत्पन्न किया जिनका नाम था हरियश्व, और वो सब 10,000 पुत्रों को बोला कि आप पारिवारिक जीवन में प्रवेश करके और प्रजा को बढ़ाइए। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं प्रजापति दक्ष, जिनका उद्देश्य है कि संसार में जनसंख्या बढ़ानी है, घटानी नहीं, बढ़ानी है। इस संसार में किसी भी चीज की कमी नहीं है। ये गलत फहमी है कि जनसंख्या कम करके हम ज्यादा सुखी रहेंगे, हमारे पास ज्यादा साधन रहेंगे। तो भगवान के द्वारा इस सृष्टि अपने आप में पूर्ण है। तो प्रजापति दक्ष ने 10,000 पुत्रों की उत्पत्ति की और उनको आदेश दिया कि और अपनी जनसंख्या और बढ़ाइए, लेकिन इससे पहले अपने आप को शुद्ध कीजिए और नारायण सरस में जाके तपस्या कीजिए। नारायण सरस में जब वहां पर गए तो वहां पर उनकी मुलाकात नारद मुनि से होती है। नारद मुनि उन्हें आध्यात्मिक संदेश देते हैं। वो देखते हैं कि होनहार बच्चे हैं, तपस्वी हैं, शुद्ध हैं और अच्छे संस्कार हैं। ये अगर पारिवारिक जीवन में जाएंगे तो फंस जाएंगे। इनको सीधा भगवत धाम जाने के लिए ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। तो 10,000 पुत्र तुरंत ब्रह्मचारी बन गए। जब ये बात दक्ष के तक पहुंची तो वो उसको बहुत क्रोध आया, लेकिन फिर वो दक्ष था, उसने फिर से 1,000 संतानों की उत्पत्ति की और फिर से उनको भेजा कि जाओ आप नारायण सरस में तपस्या करके आओ। यानी कि तपस्या करना इतना महत्वपूर्ण था। तो फिर से 1,000 पुत्र वहीं उसी स्थान पर जाते हैं नारायण सरस में और वहां पर फिर उनकी भेंट होती है नारद मुनि से। इस बार नारद मुनि को ज्यादा प्रचार नहीं करते, केवल इतना ही कहते हैं आप छोटे भाई हो, बड़े भाइयों से आपका प्रेम था, क्यों नहीं अपने बड़े भाइयों के बताए हुए मार्ग पर चलते हो। तो छोटे भाई मतलब बिल्कुल ठीक बात है, लॉजिकल बात है। और जो बड़े भाई गए हैं अभी खुश हैं सबके सब, तो 1,000 पुत्र भी चुपचाप ब्रह्मचारी बन जाते हैं। तो जब ये दूसरी बारी दक्ष को मालूम चलता है तो दक्ष इस बारी इस बात को सहन नहीं कर पाते। और उससे बड़ी बात यह है कि इस बात की खबर देने स्वयं कौन आते हैं दक्ष के पास, स्वयं नारद मुनि आते। ये बात किसी तीसरे व्यक्ति से दक्ष तक नहीं पहुंचती कि देखो नारद मुनि ने क्या कर दिया, स्वयं नारद मुनि उनके समक्ष आके बता रहे हैं कि आपके दूसरे के साथ बेटे भी ब्रह्मचारी बन गए हैं। तो दक्ष को बहुत क्रोध आता है और दक्ष अपने आप को संभाल नहीं पाते और दक्ष उनको खूब गालियां देते हैं। इस अध्याय का नाम है शाप। वो बोलते हैं तुम दिखने में संत हो, ऐसे संत नहीं हो, तुम बहुत ही निंदनीय व्यक्ति हो और तुम लंपट हो, धोखेबाज हो, वो हर तरह का जो भी अपशब्द वो यूज कर सकते थे, प्रयोग कर सकते थे, किया। और बोले तुमसे अच्छा साधु तो मैं हूं। और फिर उनको श्राप देते हैं कि तुम कभी भी एक स्थान पर ज्यादा देर तक टिक ना सको। दक्ष के लिए बहुत बड़ा श्राप था क्योंकि दक्ष घर में रहता था, गृहमेदी था, घर से बहुत आसक्त था। और किसी भी घर वर्ण में रहने वाला व्यक्ति दूसरे को यही शाप दे सकता है तुम्हारा कभी घर ना बसे और तुम ऐसे भटकते रहो। जैसे चैतन्य बाप निमाई पंडित को भी एक ब्राह्मण ने यही श्राप दिया था जिन्हें उस निकाल के हाथ में कि तुम्हारा कभी घर ना बसे। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए थे कि ये श्राप नहीं वरदान है। उसी ढंग से नारद मुनि को भी ये श्राप दिया गया और श्रील प्रभुपाद कहते हैं ये प्रत्येक प्रचारक के लिए एक वरदान है। इसके बाद अब ये बात हो रही है, सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं, प्रति जग्राहा यानी कि स्वीकार किया तद बाड़म। नारद मुनि बोला तथास्तु, जैसा आप कह रहे हैं आपका ये श्राप मुझे स्वीकार है। नारदा साधु सम्मत, साधु सम्मत जो कि प्रमाणिक साधु हैं, एतावान इतना साधुवादो, साधु पुरुष की प्रशंसा ही नित्य तिक्ष्ते ईश्वरा स्वयं। इस तरह से उन्होंने दक्ष प्रजापति के श्राप को स्वीकार किया। हालांकि ईश्वरा स्वयं वो अपने आप में इतने योग्य थे नारद मुनि जी कि वो दक्ष प्रजापति को इसके प्रति उत्तर में दूसरा श्राप दे सकते थे, लेकिन उन्होंने उनको श्राप न देकर चुपचाप इसको स्वीकार कर लिया। तद बाड़म, ऐसा बोला ठीक है आप जो कह रहे हैं मुझे स्वीकार है, मैं आपके श्राप को स्वीकार करता हूं। तो यहां पर श्री प्रभुपाद जी हमें तात्पर्य बता रहे हैं कि किस तरह को एक प्रचारक को होना चाहिए। नारद मुनि जी हम श्रीमद् भागवत में देखते हैं उन्होंने बहुत से जीवों का उद्धार किया। ब्रह्मा जी की जितनी संतानें थी, उत्तानपाद, उसके बाद प्रचेतस, उसके बाद ध्रुव महाराज, सबका इन्होंने नारद मुनि ने उद्धार किया। इसके साथ हम देखते हैं नारद मुनि ने मृगारी का भी उद्धार किया, रत्नाकर डाकू का भी उद्धार किया जो कि बाद में वाल्मीकि मुनि बने। और इस अध्याय में किस ढंग से वो दक्ष प्रजापति के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं, इससे हम सब प्रचारकों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम सब चैतन्य महाप्रभु के इस हरे कृष्ण आंदोलन में जुड़े हैं और हमारे मार्गदर्शन करने के लिए श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकें और उनके शिष्यों का मार्गदर्शन हमारे पास उपलब्ध है। कल श्रील प्रभुपाद जी का लेक्चर था फ्राइडे को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी के आविर्भाव दिवस पर। तो प्रभुपाद जी उस लेक्चर में बता रहे थे कि उनके गुरु महाराज यानी कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ये चाहते हैं कि इस आंदोलन में जुड़ा हुआ प्रत्येक भक्त एक मिशनरी हो। मिशनरी का अर्थ है कि वो जो चैतन्य महाप्रभु का मिशन है, चैतन्य महाप्रभु का मिशन है कि प्रत्येक जीव तक कृष्ण प्रेम को पहुंचाना। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु होई तारे देश। कि प्रत्येक जीव को जो इस मिशन, इस चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में जुड़ा हुआ है, उसके इस मिशन को स्वीकार करना चाहिए। और विशेषकर जिसका भारत भूमि में जन्म हुआ है, भारत भूमि ते हैले मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। हम सब जीवात्माओं को भारत भूमि में ये मनुष्य जन्म मिला है इसीलिए कि हम चैतन्य महाप्रभु के संदेश को समझ सकें, अपने जीवन में उतार सकें और इसका प्रचार कर सकें। इसलिए हमें भारत भूमि में जन्म लेने की सुविधा प्राप्त हुई है। ये बहुत बड़ा अपने आप में वरदान है। अगर हम इस वरदान का सही उपयोग नहीं करते हैं और दुरुपयोग करते हैं, भारत भूमि में जन्म लेने के बाद हम पाश्चात्य देशों की नकल मारकर अपना जीवन केवल इंद्र तृप्ति करने में और सुख सुविधाएं बिटोरने में करते हैं, तो भारतवासियों को इसका बहुत हैवी रिएक्शन उठाना पड़ता है। हम लोगों का जीवन इसके लिए सुटेबल ही नहीं है कि हम केवल सुख सुविधाओं के पीछे भागे। हमारा जीवन ही इसलिए है कि हम इस आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करके चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार पूरे विश्व भर में करें। इसीलिए हमें मनुष्य जीवन ये भारत भूमि में प्रदान किया गया है। तो इसलिए हम सबको अपने जीवन को अगर सुधारना है तो एक मिशनरी स्पिरिट अपने अंदर लानी पड़ेगी। हम सबका जन्म अज्ञानता में हुआ है, बद्धजीव का जन्म अज्ञानता में होता है, लेकिन उसका दूसरा जन्म तब होता है जब वो प्रमाणिक गुरु के संपर्क में आता है और फिर प्रमाणिक गुरु उनको दृष्टि प्रदान करते हैं, ज्ञान देते हैं। ओम अज्ञानस तिमिरंदस्य ज्ञानंजन शलाकय चक्षुर्मिलितं येनम तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जो गुरु दृष्टि प्रदान करते हैं इसका अर्थ ये है कि गुरु उसको अपने मिशन में सम्मिलित करते हैं। जब तक कोई शिष्य गुरु के मिशन में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं होता इसका मतलब वो अभी अज्ञानता में ही है, उसकी भी आंखें नहीं खुली हैं। बुद्धिमान होने का ही ये मतलब है कि हम गुरु के मिशन में अपने आप को झकोर दें। ये जीवन केवल गुरु के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए है, चैतन्य महाप्रभु के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए है। और वो मिशन क्या है कि संसार में प्रत्येक जीव दुखी है और उसको मालूम नहीं कि उसके दुख का कारण है कृष्ण को भूलना। कृष्ण प्रेम से वंचित रहकर हमारा जीवन हमेशा नीरस रहेगा क्योंकि कृष्ण ही रसराज है। तो ये बात हमने अपने खुद को साक्षात्कार करके इसका प्रचार करना है, तो उसके लिए हम सबको प्रचारक होना आवश्यक है और हमारे अंदर ये मिशनरी स्पिरिट होना चाहिए। और अगर हम भगवान का गुणगान करना चाहते हैं, लोगों तक कृष्ण का ज्ञान पहुंचाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने अंदर साधुओं के गुणों को विकसित करना पड़ेगा। चाहे हम पुरुष हैं, स्त्री हैं, गृहस्थ आश्रम में हैं, चाहे ब्रह्मचारी आश्रम में हैं, हम सब साधु बनने का प्रयास कर रहे हैं। दिखने में हम लोग कोई बिजनेसमैन या हाउसवाइफ या कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हमें साधु बनना है। बनना चाहते हैं हम सब साधु? आप सब साधु बनना चाहेंगे? कोई साधु का मतलब है परफेक्ट जेंटलमैन। तो उसके लक्षण बताए गए हैं, तितिक्षवा कारुणिका सुहृद सर्वदेही नाम अजात शत्रुवा शांता साधवा साधु भूषणा। अगर साधु हमें बनना है और इस प्रचार के आंदोलन में कुछ सहयोग देना है तो हमें सबसे पहले तितिक्षवा यानी कि सहनशील बनना होगा। नारद मुनि जी के ऊपर सारे के सारे आरोप लगाए जा रहे हैं और नारद मुनि जी का स्तर हम जानते हैं और वो चुपचाप इन सबको सह रहे हैं। क्यों सह रहे हैं? क्योंकि वो दक्ष का उद्धार करना चाहते हैं, इसलिए चुपचाप नारद मुनि वहां खड़े सह रहे हैं। तो तितिक्षवा यानी कि टॉलरेंट सहनशील होना अति आवश्यक है। साधु का पहला लक्षण है उसको सहनशील होना चाहिए। सहनशीलता का अर्थ क्या है आपकी दृष्टि में? सहनशीलता होने का अर्थ क्या है? और अंदर ही अंदर कुड़ते जाना है उसको तो सुन लिया और घर जाके बच्चों को खूब पिटाई करते हैं है ना, यही होता है। और बच्चे को गुस्सा होता है वो क्या करता है, अपने खिलौने को फाड़ देता है। कहीं ना कहीं किसी को कुछ करना है, तो क्या करना है? सहनशील होने का अर्थ क्या है? हाँ, प्रभुपाद यही बोलते हैं कि सहनशील होने का अर्थ है कि सहन करना बिना विचलित हुए, बिना विचलित हुए सहन करना। वो कैसे संभव है बिना विचलित हुए सहन करना? सहनशीलने का दूसरा अर्थ है क्षमा करना। जब तक उस किसी व्यक्ति को हम क्षमा नहीं करेंगे तो हम सहन ही नहीं कर पाएंगे। और दूसरा तरीका है सहनशील होने का कि अर्थ है कि कोई भी हमारे पास कितना भी नकारात्मक नेगेटिव व्यवहार क्यों ना करे, हम उसके साथ हमेशा सकारात्मक पॉजिटिव व्यवहार करें। डीलिंग नेगेटिविटी विथ पॉजिटिविटी इज टॉलरेंस। वो हमारे ऊपर गलत आरोप लगाता रहे, हमारी बुराई करता रहे, लेकिन हम उस व्यक्ति के प्रति हमेशा पॉजिटिव रहे, ये सहनशीलता है। नारद मुनि के ऊपर तरह तरह के आरोप गाली कर रहे थे लेकिन नारद मुनि चुपचाप खड़े रहे। नारद मुनि ये नहीं बोला सेम टू यू, नारद मुनि ने बोला तथास्तु, जैसा आप कह रहे हैं मुझे स्वीकार है, मैं मानता हूं मैं साधु नहीं हूं, मैं मानता हूं कि आप मुझसे बड़े अच्छे साधु हैं, मैं मानता हूं मैं धोखेबाज हूं, मैं मानता हूं मैंने आपके प्रति बहुत बड़ा अन्याय किया, तथास्तु तद्बाढ़। कोई भी बात डिस्प्यूट नहीं की, कोई अपना काउंटर आर्गूमेंट नहीं किया, क्योंकि एक बार उनका सारा गुस्सा निकल जाए तो ये सहनशीलता है और ये बहुत बड़ा गुण है। हम सबको इसको अंदर अपने अंदर विकसित करना होगा। इस संसार को आज भौतिक जगत को दुखाले बताया गया, पदम पदम यत विपदम, जगह जगह पर क्लेश है। मुख्यतः तीन तरह के क्लेश हैं, कौन कौन से? आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक। आध्यात्मिक क्लेश है शरीर और मन का क्लेश, इसको सहना होगा। शरीर और मन का क्लेश यानी कि छह तरह के वेग, शरीर के वेग, वाणी का वेग, जीवा का वेग, उदर का वेग, उपस्थ का वेग और मन का वेग, क्रोध का वेग, इन छह वेगों को सहना भी सहनशीलता है। उसकी शुरुआत यहीं से होती है। हम देखते हैं कि भक्त लोग कितनी तपस्या करते हैं, जो प्रचारक हैं, अगर वो अपने शरीर की आवश्यकताओं को ही पूरा करने लगे तो फिर वो मिशन के बारे में क्या सोचेंगे। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ये छह वेगों का सहना केवल गुरु के ही लक्षण नहीं है, अगर हम अच्छा शिष्य बनना चाहते हैं तो हमें गोस्वामी बनना पड़ेगा। केवल गुरु बनने के लिए ही गोस्वामी बनना आवश्यक नहीं है, अच्छा शिष्य बनने के लिए हमें गोस्वामी के स्तर पर आना पड़ेगा। इस मन और शरीर के वेगों को सहना सीखना पड़ेगा। आध्यात्मिक क्लेश, मन और शरीर के क्लेश। कभी भी हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता, क्योंकि शरीर में तरह तरह की बीमारियां हैं। इस शरीर की बीमारियों के रहते रहते भी हम अपनी सेवा में कुछ बाधा ना आने दें। इसका अर्थ ये नहीं है कि अपने स्वास्थ्य का हम ख्याल ना रखें, हम अपने स्वास्थ्य का पूरे सावधानी से बरतें, लेकिन अगर फिर भी जितना मर्जी हम स्वास्थ्य का ख्याल रखें, हमारे शरीर में बीमारियों का प्रकोप तो आएगा ही आएगा। तो हर परिस्थिति में रहते हुए, इसको सहते हुए, हम अपने मिशन को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। इसी तरह मन का क्लेश, मन में तरह तरह के गलत विचार आएंगे ही आएंगे, मन हमारे हमेशा परेशान होगा ही होगा, लेकिन फिर भी उन परेशानियों में ना फंस के हम हमेशा गुरु के मिशन को आगे बढ़ाने के बारे में सोचते रहे। ये इस तरह से मन और शरीर के वेगों को सहकर हम आगे बढ़ सकते हैं। आदि भौतिक क्लेश यानी कि दूसरे जीव हमें तंग करेंगे। यहां शिला प्रभाव बता रहे हैं जीसस क्राइस्ट को भी लोगों ने क्रूसीफाई कर दिया, हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में कोड़े मारे गए, यहां तक कि नित्यानंद प्रभु के ऊपर भी आक्रमण किया गया। चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर की एक प्रचारक की टीम बनाई कि अब जाओ जगह जगह जाके हरि नाम का प्रचार करो। तो नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर जाते थे, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण कहो कृष्ण नाम, भजो कृष्ण कहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण लहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। इस तरह से हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु जाते थे घर घर में, तो कुछ लोग तो इनका आदर करते थे, कुछ लोग इनको भगा देते थे, कुछ लोग दरवाजा ही नहीं खोलते थे। तो इस ढंग से दोनों जाते थे, तो एक बार उन्होंने देखा कि दो शराबी पड़े हैं रास्ते में और एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे हैं, खूब शोर शराबा मचा रहे हैं। तो उन्होंने आसपास के लोगों से पूछा, अरे भाई ये कौन है? बोले, इनको आप जानते नहीं, जगदानंद और माधवानंद, दो ब्राह्मण, ब्राह्मण कुल के थे, गलत संघ के कारण बिगड़ गए हैं, अभी क्या कहलाते हैं, जगाई और मधाई। संसार का ऐसा कोई पाप नहीं है जो इन दो भाइयों ने ना किया हो, और हर तरह के मदिरापान, मांसाहार, स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार, ब्राह्मणों को मारना पीटना लूटना, जो पाप है सब ये लोग करते हैं। तो अरे बोले, नित्यानंद प्रभु ने बोला, क्यों हरिदास, तुमने तो पूरे 22 बाजारों में कोड़े खाए और जिन्होंने तुम्हें कोड़े मारे उनका भी तुमने उद्धार कर दिया, तो इनके उद्धार के विषय में भी सोचो भाई, तुम सोचोगे तो चैतन्य महाप्रभु निश्चय रूप से इनका उद्धार करेंगे। तो नित्यानंद प्रभु ने की तरफ हरिदास ठाकुर ने बोला, तुम बहुत धोखेबाज व्यक्ति हो, मुझे मालूम है, और तुम मुझे धोखा दे रहे हो, अगर तुमने सोच ही लिया इनका उद्धार करने के लिए तो निश्चित रूप से महाप्रभु इनका उद्धार कर देंगे। तो बोले ठीक है चले, ठीक है चलते हैं इनके पास। और जब उनके पास जाने लगे, आसपास के लोगों ने रोका, अरे भाई रुक जाओ, सन्यासी हो क्यों अपना अपमान कराओगे, इनके पास मत जाओ। बोले नहीं। तो वो शराबी दोनों लेटे हुए थे, नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर उनके पास गए और बोला, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण कहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण लाहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। उन दोनों का जब नशा टूटा, बोले कौन है भाई, कौन मेरे शोर मचा रहा है? तो नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण, पागल हो गए हो क्या, पता नहीं किसके पास आयो, और चिल्ला के दोनों भाई उनके पीछे भागे। नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर जोर से भागे अपनी जान बचाने के लिए, और ये मोटे मोटे जगाई और मदाई उनका पीछा कर रहे हैं नशे में और गालियां दे रहे हैं उनको। तो हरिदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु से बोलते हैं, भाई जब 22 बजारों मुझे पीटा गया, किसी ढंग से कृष्ण ने मुझे बचा लिया, आज नहीं लगता मैं बच पाऊंगा। और ये प्रचार करने का परिणाम है कि मृत्यु ही प्राप्त होगी, और ये सब तुम्हारे कारण हुआ है, तुम इतने चंचल हो। तो नित्यानंद कहते हैं, मेरे को गालियां मत दो, मैं चंचल नहीं हूं, चंचल है तुम्हारे स्वामी, तुम्हारे ईश्वर निमाई पंडित, है वो ब्राह्मण लेकिन व्यवहार करता है राजा की तरह, हमें आदेश दे दिया जाओ जाके प्रचार करो। तुम बोलो जहां जहां हम प्रचार करने गए हैं हमें कितनी दुर्गति सहनी पड़ी है, लोगों ने गालियां दी है, दरवाजा तक नहीं खुला, अब देखो ये लोग हमारे पीछे पड़ गए हैं, जान के पीछे पड़ गए हैं, अब भागो किसी ढंग से। और दोनों भागते भागते और पीछे जगाई मदाई भाग रहे हैं, लेकिन जगाई मदाई ने नशे में थे और बहुत मोटे मोटे थे तो ज्यादा तक भाग नहीं सके, और कुछ समय के भागने के बाद जगाई मदाई खुद कंफ्यूज हो गए, कहां पे आए, सांस फूल गया, तो बेचारे रुक गए। तो फिर नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर ने देखा कि पीछे कोई नहीं आ रहा, तो फिर वो शांत हुए। फिर जब वो भक्तों के सभा में गए तो विश्वंभर प्रभु चैतन्य महाप्रभु बैठे और आसपास सभी वैष्णव हैं, ये भागते भागते हांफते हांफते वहां पहुंचे और बोले कि आज तो बुरा हाल हो गया। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोले क्या हुआ, तो उन्हें समझाया कि इस जंग से ये दो ब्राह्मण थे जगाई और मधाई। तो महाप्रभु ने ये कौन है, तो गंगादास जी बैठे थे और श्रीवास पंडित बैठे, उनके बारे में बताया। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला लाओ उनको, अभी मैं उनका सर काट देता हूं। तो नित्यानंद प्रभु ने ऐसी डिंगे मत मारो, मैं जब तक ये दो भाई हैं मैं प्रचार नहीं कर सकता, तुम्हें इनका उद्धार करना ही पड़ेगा, देखो तुमने मेरा उद्धार किया तो पूरा जगत तुम्हें पतित पावन के नाम से जाने लगा, और अगर अब इनका उद्धार कर दोगे तो तुम्हारे तो यशगान का कहना ही क्या, सीमा ही नहीं रहेगी, तो इनका आप उद्धार क्यों नहीं कर देते। तो चैतन्य महाप्रभु बोला ठीक है, कल जाओ दोबारा इनके पास। बाद में हरिदास ठाकुर को अद्वैताचार्य आगे से लगे, बोले क्या चल रहा है। हरिदास ठाकुर बोलते हैं मैं परेशान हो गया हूं, इस अवधूत के साथ प्रचार करने जाता हूं, ये गंगा में देखता है कोई मगरमच्छ है तो उसके ऊपर कूद जाता है, कोई रास्ते में कोई कन्या दिखाई देती है उसे अपने विवाह का प्रपोजल दे देता है, कोई रास्ते में कोई ब्राह्मण मिलता है उसकी पिटाई कर देता है, लोग मेरे पीछे पड़े आते हैं, लोगों के पांव पड़ के किसी ढंग से इसको छुड़वाते हैं। तो आज तो हादी कर दी, दो शराबियों के बीच में घुस गया। तो अद्वैताचार्य बोलते हैं अरे भैया ये खुद शराबी है, शराबियों के पास ही तो जाएगा, तो इन तीन शराबियों ने मिलकर तुम्हारा बुरा हाल कर देना है, तुम एक ब्रह्मचारी हो किन चक्रों में पड़ गए, तुम भाग जाओ, तो देखना ये दो शराबी हैं इनको भी यहां पे ले आएगा एक दिन, और ये भी हम सबके साथ मिलकर हरी बोल बोल रहे होंगे। बोले क्या करूं, फंस गया हूं, महाप्रभु का आदेश इनके साथ जाना ही पड़ेगा। तो इस जग से वैष्णव के बीच में आदान प्रदान होता है, और कुछ दिनों के बाद नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर दोबारा से जाते हैं जगाई मधाई के पास, और फिर से कहते हैं बोलो कृष्ण भजो कृष्ण लाहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण कर्ण प्राण, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण लाहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण कर्ण प्राण। अब तो जगाई मधाई से सहाने जाता, बोले फिर आ गए तुम, तो मधाई ने क्या किया, वो मटका उठाया, दारू पी चुका था, और उस मटके को जोर से उसने नित्यानंद प्रभु पर उसके ऊपर प्रहार किया, और नित्यानंद प्रभु के माथे से खून निकलने लगा। वैसे तो भगवान का देह दिव्य है, लेकिन इस लीला में भगवान दिखा रहे हैं कि देह से खून निकल रहा है, और बात तुरंत चैतन्य महाप्रभु तक पहुंचती है, और चैतन्य महाप्रभु ये सहन नहीं कर सकते, वो तुरंत भागते हुए वहां पर आते हैं और सुदर्शन चक्र को छोड़ देते हैं। सुदर्शन चक्र जगाई मधाई के सामने सब प्रकट होते हैं, तो दोनों घबरा जाते हैं, और जगाई और मधाई चैतन्य महाप्रभु के पांव पर पड़ते हैं। तब नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि हे महाप्रभु, आज इस युग में आप किसी का वध करने नहीं आए, और इस जगाई ने मेरी रक्षा की थी, जब मधाई ने मेरे प्रहार किया था तो जगाई ने इसको रोक दिया था। जब महाप्रभु ये सुनते हैं कि जगाई ने नित्यानंद प्रभु की रक्षा की, तो महाप्रभु जगाई का आलिंगन कर लेते हैं और जगाई को बोलते हैं कि मैं तुम्हें भावत तुम्हें धन्यवाद देता हूं, कृतज्ञ हूं, और फिर महाप्रभु जगाई को अपना चतुर्भुज रूप दिखाते हैं, और जगाई के वक्ष स्थल पर अपना दिव्य चरण कदम रखते हैं और उसको कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। जब जगाई के ऊपर ये कृपा होती है तो मधाई कहता है कि हम दोनों ने सारे पाप इकट्ठे किए, मेरे पे भी कृपा कीजिए। तो मधाई कहते हैं, महाप्रभु कहते हैं ये संभव नहीं है। तो मधाई बोलते हैं इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, नित्यानंद प्रभु से क्षमा मांगनी पड़ेगी। तो नित्यानंद प्रभु के ऊपर हालांकि मधाई ने आक्रमण भी किया था, फिर भी नित्यानंद प्रभु उसको क्षमा करते हैं और महाप्रभु से निवेदन करते हैं कि आप इसको कृष्ण प्रेम प्रदान करिए। और हम देखते हैं कि जगाई और मधाई बहुत महान वैष्णव बनते हैं। कहने का अर्थ यह है इस कथा से कि नित्यानंद प्रभु जो कि आदि गुरु हैं, वो हमें शिक्षा दे रहे हैं कि एक प्रचारक को बहुत सहनशील होना चाहिए। दूसरे जीव कितना भी हमें तंग क्यों ना करें, हमारा उद्देश्य है प्रचार करने का अर्थ किसी को हराना नहीं है, प्रचार करने का अर्थ है उसके हृदय में परिवर्तन लाना। और हृदय में हम परिवर्तन ला सकते हैं अपनी सहनशीलता और अपनी विनम्रता से। चैतन्य महाप्रभु क्या फार्मूला दे रहे हैं, त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। अगर हम हमेशा, सदा का अर्थ है कोई ब्रेक नहीं है बीच में। हम लोग अपने जीवन काल में देखें क्या हमारा कीर्तन भगवान का गुणगान सदा चलता है। यहां पे कितने भक्त ऐसे हम जो कर सकते हैं कि हम 24 घंटे भगवान का कीर्तन करते रहते हैं। अगर हम 24 घंटे भगवान का कीर्तन नहीं करते तो निश्चित रूप से हम कर्म बंधन में फंसेंगे, क्योंकि जीवात्मा का एकमात्र कर्तव्य है कृष्ण का कीर्तन करना। और 24 घंटे हम कृष्ण का कीर्तन तभी कर पाएंगे जब हम पेड़ की तरह सहनशील होंगे और अपने आप को घास के तिनके से भी ज्यादा सुनीच मानेंगे। जब हम दूसरों को हमेशा मान देंगे चाहे वो हमें मान दे या ना दे, जब तक हम इस त्रिनादपि सुनिचेन श्लोक का अपने जीवन में नहीं उतारेंगे हमें कुछ भी साक्षात्कार नहीं हो सकता, कोई आध्यात्मिक साक्षात्कार नहीं हो सकता। इस द्वार से हमें निकलना ही पड़ेगा, इस द्वार से हमें निकलना ही पड़ेगा। और हमारे गुरु महाराज कहते हैं जब तक कोई श्लोक अपने जीवन में नहीं उतारेगा वो इस भौतिक जगत में सड़ता ही रहेगा। इस भौतिक जगत से उद्धार पाना है, इस महाप्रभु के आंदोलन में हमेशा कीर्तन करना है तो सहनशील तो बनना ही पड़ेगा, क्योंकि इस संसार में इतनी दुविधाएं हैं। उन दुविधाओं के चक्कर में हम फंस गए तो हम भगवान का कीर्तन भूल जाते हैं। तो उन दुविधाओं को से निपटारा पाने का एकमात्र तरीका क्या है, सहन कर लो, बस जस्ट टॉलरेट। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगाम पाना नित्य ताम प्रतीक्षस्व भारत। ये भारत आप इसको सहन कर लो, ये सुख और दुख अनित्य हैं सर्दी और गर्मी की तरह। और जो ये कला सीख लेता है सहन करने की, उसके साथ क्या होता है अगले श्लोक में बताया गया है, यम ही न व्यथंती इते पुरुषम पुरुषर्षभा सम दुख सुखा धीरा सा अमृतवाय कल्पते। जो ये सहन करना सीख सकता है वो पुरुषर्षभा, वो पुरुषों में श्रेष्ठ है। सहन करना कमजोरी की निशानी नहीं है, सहन करना वास्तव में असली शक्ति है। और जो ये सहन करना सीख सकता है और बिना विचलित हुए, यम ही न व्यथंती इते विचलित नहीं होता, सम दुख सुखा धीरा सा अमृतवाय कल्पते, वो ही योग्य है अमृत तत्व को प्राप्त करने के लिए, इमोर्टेलिटी को प्राप्त करने के लिए, भगवत धाम जाने के लिए, जो इस संसार के दुखों को सहन करते हुए भगवान के प्रचार में लगा हुआ है। और चैतन्य महाप्रभु ये त्रिनादपि श्लोक है केवल कहने के लिए नहीं कह रहे, उच्च बाहु अपने दोनों बाजुओं को ऊपर करके सब जीवों को बुला बुला कर ये बोल रहे हैं, त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुः अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। हम सबको अगर अपने चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करनी है तो इस श्लोक के ऊपर खूब मनन करना होगा, अपने प्रतिदिन की दैनिक अवस्थाओं में इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना पड़ेगा। नारद मुनि जी ने करके दिखाया, चुपचाप सहन करते रहे जिससे कि दक्ष प्रजापति का उद्धार हो सके। और हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी ने अपने जीवन काल में ऐसी बहुत सी अपमानजनक परिस्थितियों का सामना करते हुए वो प्रचार कार्य में लगे रहे। हमें सहन करने की शक्ति प्राप्त होगी जब हमारे जीवन का कोई उच्च लक्ष्य होगा। जब तक हमारे जीवन का कोई मिशन नहीं होगा, ऊंचा लक्ष्य नहीं होगा, हम सहन नहीं कर पाएंगे। जब किसी व्यक्ति का ऊंचा लक्ष्य होता है तो वो सहन करता है। ऊंचा लक्ष्य क्या है, ना धनम ना जनम ना सुंदरिम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मने जन्मनेश्वरे भवताद भक्ति रहे तु कीतहि। ना मुझे धन चाहिए, ना मुझे जन चाहिए, ना मुझे कोई सुंदर स्त्री की इच्छा है, ना ही मैं सालंकार कविताओं का अभिलाषी हूँ। मुझे क्या चाहिए? जन्म जन्मांतर मुझे केवल आपकी अहेतु की भक्ति चाहिए। अहि नंद तनुज किंकरम पतितम माम विश्व में भवा बधो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम चिंतया। मैं नहीं जानता किस कारण से मैं संसार में गिर पड़ा हूँ, बस कृपया करके आप मुझे अपने चरण कमलों के धूल का एक कण बना लीजिए। बस अगर ये हमारा हायर मिशन है, ऊंचा उद्देश्य है, तब हम बड़ी आसानी से त्रिनादपि सुनिश्चिन तरोरपि सहिष्णा का पालन कर सकते हैं। लेकिन हमें भक्ति में आने के बाद भी पोजीशन चाहिए, पावर चाहिए, नेम चाहिए, फेम चाहिए, यश पूजा लाभ प्रतिष्ठा चाहिए, तो फिर हम कैसे सहनशील होंगे? हमारे इस पूजा लाभ प्रतिष्ठा के रास्ते में कोई भी आएगा हमसे सहन नहीं होगा। लेकिन हमें सब अगर ये नहीं चाहिए, एक ऊंचा उद्देश्य है, तो कोई भी हम पे आघात करता रहे, कोई भी हम पे आरोप लगाता रहे, हमारा उद्देश्य है नहीं, हमने कृष्ण के चरणों की धूल का एक केवल कण बनना है। हर अवस्था में केवल सेवा का मौका ढूंढना है, और सेवा की भक्ति किसी भी भौतिक परिस्थिति से रुक नहीं सकती। तो इसलिए इसके ऊपर बहुत कुछ कहा जा सकता है, समय काफी हो रहा है तो हम आगे बढ़ेंगे। नारद मुनि के इस वार्तालाप से हम देखते हैं कि नारद मुनि कितना आदर दे रहे हैं दक्ष प्रजापति को, कितने रिस्पेक्टफुल है। अमानिना मान दे, दक्ष प्रजापति उनका अपमान कर रहे हैं और नारद मुनि उनको आदर दे रहे हैं, ये है अमानिना मान दे। हम तो उसी को आदर देते हैं जो हमें आदर देते हैं। हमारा फार्मूला है, भगवान ने कहा है ये यथा माम प्रपद्यन्ते, वो भगवान कह सकते हैं, हम नहीं कह सकते। हम दास दासानुदास हैं, हर एक परिस्थिति में प्रत्येक जीव हमारा स्वामी है। वास्तव में प्रैक्टिकल रूप में आदर देने का अर्थ क्या है? उसका मतलब क्या है? आदर देने का अर्थ है कि हम उस व्यक्ति को ये स्वतंत्रता देते हैं कि वो अपने विचार रख सकता है, उसका अधिकार है। मेरा अपना तरीका है सोचने का, कार्य करने का, उसका अपना तरीका है सोचने का, कार्य करने का। तो अगर हम किसी को आदर देते हैं तो उसके ओपिनियन के, उसके मत को हम आदर करते हैं। हम ऐसा कर सोचते नहीं, हम चाहते हैं कि जो मैं सोच रहा हूं, जो मेरी सोच ठीक करने का, कार्य करने का तरीका है, वही तरीका है। माई वे हाई वे, योर वे नो वे। कृष्ण कहते हैं वास्तव में ऑलवेज माई वेज, जितने भी रास्ते हैं सब कृष्ण के रास्ते हैं। मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशा, हर व्यक्ति जीव कृष्ण का अंश है। तो हर व्यक्ति जीव के पास ये स्वतंत्रता है कि अपना अपनी विचार रखे। तो किसी को आदर देने का अर्थ है कि उसके विचारों को आदर करना। हम लोग वैष्णवों के समाज में अधिकांशतः अपराध किस लिए कर बैठते हैं? क्योंकि हम किसी के स्वतंत्र होने के अधिकार को नहीं समझते। एवरी मन हैज द फ्रीडम टू बी थिंकिंग इन हिज ओन वे, वर्किंग इन हिज ओन वे। हर किसी को स्वतंत्रता है कि वो अपने ढंग से सोचे, अपने ढंग से कार्य करे। लेकिन हम सोचते हैं कि जैसे मेरी सोच है उसके हिसाब से क्यों नहीं चल रहा, फिर हम वैष्णव अपराध करते हैं। तो नारद मुनि चुपचाप वहां पे खड़े हैं। तो दक्ष प्रजापति ये सोच रहे हैं, देखिए दक्ष प्रजापति भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, नारद जी भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, और दोनों मिलकर ब्रह्मा जी के मिशन की सेवा कर रहे हैं। तरीका दोनों का अलग अलग है। तो नारद मुनि अपने तरीके से उद्धार किया, ब्रह्मा जी अपने, दक्ष प्रजापति अपने तरीके से करना चाहते हैं ब्रह्मा जी की सेवा। तो नारद मुनि चुपचाप वहां खड़े हैं, ठीक है कहने दो, कहना क्या चाहते हैं, इनका अपनी सोच है। तो अपनी सोच उन्होंने पर ला दी नहीं, ठीक है आपने जो कह रहे हैं उसको मैं स्वीकार करता हूं। तो ये रिस्पेक्टफुल। शिवजी गोस्वामी पाद कहते हैं बिना आदर दिए कोई भी प्रचारक अपने प्रचार में सफल नहीं हो सकता। कोई भी प्रचारक, अगर हम किसी को प्रचार करते हैं तो जिसको हम प्रचार कर रहे हैं उसको पूरा आदर देना पड़ेगा। हम लोग बाहर गए किसी व्यक्ति से जो कि भौतिकता में लिप्त है, अंदर ही अंदर हम सोच रहे हैं क्या बेकार व्यक्ति है, मदिरा पान करता है, प्याज लहसुन खाता है, मांसाहार करता है, उफ़ो इस पे मैं कुछ दया कर दूं, चलो छोड़ो पतित जीव, अगर ऐसा सोच से उसे हम बातचीत कर रहे हैं, हमारे प्रचार का कोई भी लाभ नहीं होगा, वो प्रचार इफेक्टिव नहीं होगा। जब तक हम अपने ऑडियंस को आदर नहीं देंगे, वो संदेश उनके हृदय में पहुंचेगा ही नहीं, जो अति आवश्यक है। नारद मुनि जब दक्ष प्रजापति से बात कर रहे थे तो ये भी सोच रहे होंगे, देखो ये मुझे गालियां निकाल रहा है, इसकी औकात भी क्या है, सोच सकते थे। अभी अभी तो इसको भगवान के दर्शन हुए, और कैसे दर्शन हुए, शास्त्रों से कुछ प्रार्थना लेकर बोल दी, भगवान ने दर्शन दे दिए कृपा करके। मैं तो ऐसे ही घूमता रहता हूं, राधा नारद मुनि बजाए बीड़ा है, मैं तो कभी भी चला जाता हूं वैकुंठ में, कभी भी भगवान से मिल जाता हूं, ये तो कभी एक बार ही देखा इन्होंने भगवान को, अब मुझे अपमान कर रहे हैं कुछ भी। और अभी भी तो मैंने इनके इसी के 11,000 बेटों को यूं ही ब्रह्मचारी बना दिया, और मेरे पास तो मेरे शिष्य कैसे हैं, मृगारी और रत्नाकर डाकू जैसे मेरे शिष्य हैं, अभी बुला देता हूं उनको है। इसके पास कौन से शिष्य हैं, ये तो केवल प्रजा उत्पन्न करना जानता है, वो तो पशु भी कर लेंगे, इसमें क्या है। नारद मुनि का कोई कॉम्प्लेक्स नहीं था ना, कि मैं एक क्लास प्रीचर हूं, एक मेरी एक बात से लोगों का हृदय बदल जाता है, ये बेचारा मेहनत करता रहता है, उसको ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं था। पूरा आदर दे रहे थे दक्ष प्रजापति को, सुन रहे थे। तो अगर हम प्रचार करना चाहते हैं तो जिनको हम प्रचार करें उनको हम हृदय से आदर दें। और देखिए चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु बोला मायावादी कृष्णेर अपराधी। देखिए वाराणसी में गए तो प्रकाशानंद सरस्वती अपने 10,000 शिष्यों के साथ वहां पे थे, और चैतन्य महाप्रभु भी वहां पर थे। प्रकाशानंद सरस्वती प्रतिदिन सबके सामने पब्लिकली चैतन्य महाप्रभु का अपमान किया करते थे कि ये इंद्रजाली है, ये जादूगर है, ये उल्टे सीधे कर्तव्य दिखाता है, रोना हंसना चिल्लाना, ये कोई सन्यासी के लक्षण थोड़ी होते हैं, सन्यासी तो वेदांत पर चर्चा करते हैं, ये उल्टा सीधा सड़कों पर नाचता रहता है, दिखावटी भक्त है, ये कोई भक्ति नहीं है, दिखावटी सन्यासी है, नकली सन्यासी है। और सारे ब्राह्मण आके चैतन्य महाप्रभु को बड़े दुखवश ये बताते थे कि आप इस तरह से निंदा हो रही है, तो महाप्रभु गुस्सा नहीं आता था, महाप्रभु केवल मुस्कुराते थे। और जब उन सन्यासियों की सभा में चैतन्य महाप्रभु गए तो सीधा जाके चुपचाप मंच पर नहीं बैठ गए कि आई एम द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, अहम सर्वस्य प्रभु। महाप्रभु कहां बैठे, जहां में सब लोग हाथ पांव धोते थे, और फिर सब सन्यासियों ने उनको जब ऊपर बुलाया मंच पर, तो महाप्रभु ने उनसे कोई आर्गुमेंट नहीं किए, महाप्रभु ने बहुत ही प्रेम से उनसे बातचीत की। तो शिला प्रभुपाल वहां तात्पर्य में लिख रहे हैं, अगर कुछ लोग जो हमारा प्रतिरोध करते हैं, अगर उनके साथ हम गुस्से में बात करेंगे तो उनका आक्रोश और बढ़ेगा। तो जो लोग हमसे क्रोधित हैं या हमारा प्रतिरोध कर रहे हैं, उनके साथ हमें और प्रेम से बात करनी चाहिए, जिससे उनका आक्रोश कम हो, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, कि हम उनको कृष्ण के समीप ला सके। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनसे बहुत ही प्रेम से बात की, और बहुत मधुर वाणी में बात करके उनको वैष्णव बना दिया। तो ये विनम्रता और सहनशीलता और आदर देने में शक्ति है, अमानिना मान देन। और हम देख सकते हैं नारद मुनि के इस प्रसंग में कि नारद मुनि जी बिल्कुल भी जैसे कहते हैं गर्वित नहीं है। श्रील भक्ति सांसद ठाकुर महाराज कहते हैं, दोज हु आर प्राउड कैन नेवर प्रीच, जो हमेशा अपने जिनको अपनी योग्यता पे बहुत घमंड होता है कि मैं बहुत बड़ा प्रचारक हूं, मैं बहुत कुछ अच्छा कर सकता हूं, उसके पास कभी भी भगवान अपने आप को प्रदर्शित नहीं करते, प्रकट नहीं करते, उसकी वाणी में कभी भी शक्ति नहीं आएगी। तो हमें हमेशा त्रिनादपि सुनिश्चय, अपने आप को घास के तिनके से भी नीचा मानना चाहिए। जो भी प्रचार के कार्य में हमारी उपलब्धियां हैं, वो केवल श्रील प्रभुपाद जी की और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही हमें प्राप्त होते हैं। और देखिए यहां पर नारद मुनि चुपचाप खड़े हैं, बोले तद बाड़म, जो आपने मुझे श्राप दिया मैं उसको स्वीकार करता हूं। नारद मुनि ने ये केवल दक्ष प्रजापति के उद्धार होने के लिए किया। एक प्रचारक कभी भी लोकप्रियता के पीछे नहीं भागता, है ना, लोकप्रियता के पीछे उसको कुछ लेना देना नहीं है। प्रचारक का उद्देश्य अपने आप को पॉपुलर बनाना नहीं है, प्रचारक का उद्देश्य है कि जन समूह में चैतन्य महाप्रभु को पॉपुलर बनाए, कृष्ण के संदेश को पॉपुलर बनाए। अपने आप को पॉपुलर बनाने के लिए, बहुत ही जनता का प्रिय बनाने के लिए जैसी जनता को पसंद हो वैसा उसने भजन गा दिया, जैसी जनता को पसंद हो वैसा उसने संदेश प्रस्तुत कर दिया, जैसी जनता को पसंद हो वैसा कोई चुटकुला सुना दिया, ये प्रचारक का कर्तव्य नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद बहुत ही सुंदर तरीके से लिख रहे हैं कि एक प्रचारक को सहनशील होना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं अ प्रीचर कैन नॉट लिव एन ईजी गोइंग लाइफ। हिंदी में लिखा जा रहा है एक प्रचारक कभी आलसी नहीं होता, ईजी गोइंग लाइफ नहीं हो सकती। हम लोग इस कौन आंदोलन में जुड़े हैं तो हम लोग ये ना सोचें कि ये शांति का रास्ता है। ओम शांति 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 ओम, बस आराम से यहां पर बस घर में किचकिच, बिजनेस की किचकिच, ट्रैफिक जाम, यहां पर आए तो शांति, कोई डिस्टर्ब ना करे, थोड़ा सा भगवान के दर्शन कर लिए, आराम से हरे कृष्ण महामंत्र कोने में जप लिया, प्रसाद पा लिया, ओम शांति शांति। नहीं, ये नहीं चलेगा। श्रील प्रभुपाद जी के आंदोलन में ये शांति पथ नहीं है, ये प्रेम का पथ है, है ना। और प्रेम ही असली शांति है और प्रेम में बहुत कुछ होता है, है ना। और यहां पर हम भौतिक जगत में प्रेम की बात कर रहे हैं और भौतिक जगत क्या है, दुखालयम अशाश्वतम। तो यहां अगर प्रेम करना है तो बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, वायलेंट लव स्टोरी है ये। यहां पे जगह कदम कदम पे हिंसा ही हिंसा है, मार काट युद्ध क्षेत्र में प्रेम करना है हमें तो इजी गोइंग कैसे हो सकते हो, बिल्कुल भी आराम हराम है। माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, बच्चों ने कविता पढ़ी थी हमने, बहुत लंबा रास्ता कवर करना है अभी, अभी हम विश्राम नहीं कर सकते। अगर विश्राम करेंगे तो निश्चित रूप से पतन शुरू हो जाएगा क्योंकि माया बहुत बलशाली है। तो कभी भी हमें इस आध्यात्मिक जीवन को आराम पूर्वक नहीं लेना चाहिए, आलस्य नहीं होना चाहिए। और जो गुरु हैं वो कभी भी अपने शिष्य को आलस्य होने नहीं देते, तभी एक के बाद एक नया प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट खत्म होता है दूसरा शुरू हो जाता है, उसके बाद तीसरा शुरू हो जाता है। भक्ति सिद्धांत सोटे महाराज जिस भी मठ में जाते थे सबसे पहले पूछते थे कितना बैलेंस पड़ा है बैंक में, बोला इतना बड़ा सारा सारा निकाल दो, सारा का सारा वहां से निकाल के ले जाते थे, बिल्कुल उसको खत्म कर देते थे, बोला अब दोबारा से इकट्ठा करना शुरू करो नहीं तो ऐसा नहीं होगा तो आलसी बन जाओगे। और श्रील प्रभुपाद भी ऐसा ही करते थे, किसी शिष्य को बोलते जाओ किन्या जाओ, किसी को बोलते जाओ पाकिस्तान जाओ। ब्रह्मानंद प्रभु को पाकिस्तान भेज दिया अकेले, वहां कराची में उनको मुसलमानों ने पकड़ लिया और सीधा पिस्टल गन पॉइंट माथे पर रख दिया। ब्रह्मानंद प्रभु अकेले, आप सोचिए क्या कर रहे थे वहां पे, बोला आपको ऑप्शन ही नहीं है, बोल किया उन्होंने दोनों हाथ खड़े किए, बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब इस ढंग से बोला, भगवान को पुकारा, तो जो मुसलमान था परमात्मा उसके भी हृदय में थे, उसके भगवान ने हृदय परिवर्तन किया और बोला ठीक है इस बार छोड़ देता हूं, आगे से कभी दिखाई मत देना जाओ। ऐसी घटनाएं हुई हैं। तो इजी गोइंग लाइफ, आलसी जीवन नहीं हो सकता। आप बोले नहीं नहीं जी, हम तो ग्रस्त आश्रम में छोटे छोटे बच्चे हैं, पहले उनका ख्याल रखें, बूढ़े मां बाप, इन सबकी हमने सेवा करनी है, इनको नकारना नहीं है, लेकिन हम आलसी नहीं हो सकते। हमें अपने आप को बहुत धन्यवाद देना चाहिए। कुछ भक्त लोग कंप्लेन करते हैं बहुत 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 बिजी शेड्यूल है, ये बहुत बड़ी कृपा है कि हम बहुत से सेवा में हमेशा लगे रहे। तो भक्त कभी भी आलसी नहीं होता और गुरु ये देखते हैं कि भक्त आलसी कभी भी ना हो। और कई बार हम अपना प्रचार करते करते उसी में आनंद पाना शुरू कर देते हैं, भोगना शुरू कर देते हैं, तो गुरु जैसे ही डेट करते हैं गुरु सेवा बदल देते हैं। और गुरु हमेशा अपने भक्त को विनम्र अवस्था में रखते हैं। एक बार चैतन्य श्रील प्रभुपाद जी के साथ तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज थे मायापुर में, और बॉम्बे का केस चल रहा था मिस्टर नैयर के साथ, अपने प्रभुपाद लीलामृत में पढ़ा होगा। तो तभी खबर आई कि डीड साइन हो गई है, तो प्रभुपाद जी ने तमाल कृष्ण महाराज को भेजा आप बॉम्बे जाओ और डीड साइन कर लो। तो तमाल कृष्ण महाराज बॉम्बे में आए, पीछे से जो नैयर थे उसने वकील को पैसे खिला दिए। तो वकील ने बोला तमाल कृष्ण महाराज जी को, वास्तव में ये डीड बड़ी खराब सी है, बेकार है, आपको फायदा नहीं होने वाला, मैं इसको कैंसिल कर रहा हूं। तमाल कृष्ण महाराज उनके बातों में आ गए, उन्होंने ठीक है कैंसिल कर दो, और ये करके उन्होंने प्रभुपाद जी को फोन कर दिया कि प्रभुपाद डीड कैंसिल कर दी, वो ठीक नहीं थी। प्रभुपाद बोला को बहुत गुस्सा आया, अरे उस वकील मिल गया उसके साथ, तुमने ऐसा क्यों किया। फिर बाद में प्रभुपाद वापस आए बॉम्बे, और तमाशे महाराज भी वहीं थे, तो प्रभुपाद लाइफ मेंबर्स को बुलाते थे कभी और बोला बातचीत करते करते तमाल कृष्ण को बुलाते थे, तमाल यहाँ पे आओ. बोला ही इज माई अमेरिकन डिसाइपल अ ग्रेट फूल पब्लिकली. और तमाल कृष्ण महाराज कहते हैं प्रभुपाद न्यू, प्रभुपाद जानते थे कि मेरा अहंकार बड़ा हुआ है कैसे इसको काटना है, चुपचाप सहन करते थे चुपचाप. ये गुरु ऐसे काटते हैं पब्लिकली, हमारे साथ ये व्यवहार करें हम तो उसी दिन छोड़ के चले. पब्लिकली बुला रहे हैं लाइफ मेडिसन इज माई अमेरिकन डिसाइपल अ ग्रेट फूल चुपचाप है ठीक है. तो गुरु कभी भी शिष्य को स्वस्थ नहीं रहने देते. तमाल कृष्ण महाराज की राधा दामोदर पार्टी बड़ी सक्सेसफुल थी और सारे मंदिर कंप्लेन कर रहे थे कि जो भी आता था मंदिर में उसको ब्रह्मचारी बना देते थे. तो और 60 बसें हो गई थी, 70 बसें हो गई थी राधा दामोदर की दिखने में. हर बस में कोई भी सड़क पे विवाह जा रहा है उसको बस के एक दरवाजे से वो घुसता था, दूसरे दरवाजे से सर मुंडवा के ब्रह्मचारी कपड़े बाहर निकलता था. तमाशा महाराज में इतनी शक्ति थी. और वो जिस मंदिर में आते थे मंदिर में बस नहीं लाते थे, वहां के प्रेसिडेंट बस घुसने नहीं देते थे अंदर, क्योंकि आया सारा मंदिर की व्यवस्था खराब हो जाएगी. बाहर ही बाहर से खबर आती थी कि बस आ गई है और जिसको जाना लेकर सीधा सारा का सारा मंदिर खाली हो जाता था. तो बात प्रभुपाद जी तक पहुंचे कि बड़ा अजीब सी हालत हो गई है. प्रभुपाद ने तमाशा महाराज को बुलाया, बोले बहुत अच्छा चल रहा है. यस प्रभुपाद ये रिपोर्ट है. तो बोला ठीक है आप ऐसा करो यू गो टू चाइना एंड स्टार्ट. नहीं बोला आप बंद कर दो इसको. तो तमाशा महाराज बोला बंद कर दो तो क्या करूंगा. तुम्हारे प्रभुपाद बोला नो राधा पार्टी शुड बी स्टॉप. व्हाट यू वांट, यू वांट मी टू गो टू चाइना एंड प्रीच. अब क्या चाहते हो चाइना में जाकर प्रचार करूं. प्रभुपाद ये दैट्स अ गुड आइडिया. बोले क्या. बोले हाँ अब चाइना में जाओ प्रचार करो. उनको विश्वास ही नहीं हुआ. बताते हैं कि 4-5 दिन तक तमाल कृष्ण महाराज ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और बिना कुछ खाए पिए. उनको इतना बड़ा शौक लगा. लेकिन फिर बाद में वो चाइना में गए, एक योगा सोसाइटी खोली, वहां जाके प्रचार किया और फिर देखिए हाँ चाइना में कितना प्रचार हो रहा है. तो एक प्रचारक कभी ईजी गोइंग लाइफ नहीं रख सकता. हम लोग अगर यहां पर आते हैं और प्रचार करने के नाम पर हम कुछ फैसिलिटीज ढूंढते हैं कि हमें कुछ फैसिलिटीज प्राप्त हो, सुविधाएं प्राप्त हो, तब हम प्रचार करेंगे, संभव नहीं है. प्रभुपाद के साथ गुरुदास जी आ रहे थे अमृतसर से फ्रंटियर मेल में, है ना. प्रभुपाद और गुरुदास जी अकेले थे और गुरुदास कह रहे वाह क्या संग प्राप्त हो रहा है, एक महावैष्णव का भागवत का जीवन उद्धार हो गया. दिल्ली स्टेशन पे ऐसी थोड़ी देर के लिए ट्रेन रुकी. प्रभुपाद बोले थोड़ा नीचे उतरो. नीचे उतर के बोले ठीक है यहीं रहो सेंटर खोलो. अकेले अकेले करो, कोई सहायता नहीं मिलेगी. प्रभुपाद बोले मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, तुम भी ऐसा करोगे. शिवानंद थे अमेरिका में, बोले जाओ यूरोप में प्रचार करो. बोले क्या करेंगे, जाओ चलो. तो शिवानंद ने अपने गुरु भाई हंसदूत से पूछा करूंगा क्या. हंसदूत प्रभु ने बोला देखो कुछ नहीं है, जैसे आप एयरपोर्ट से उतरोगे जहां थोड़ी भीड़ दिखाई दे वहां बैठ जाना, करतान निकालना, कीर्तन शुरू कर देना और जो गुरु प्रभुपाद सुने वो बता देना. बोला हाँ यही तो कर सकता हूं, हमें आता क्या. और कुछ समय के बाद शिवानंद प्रभु की रिपोर्ट आई कि लंदन में मुझे अंदर घुसने नहीं दिया लेकिन मैं एम्स्टर्डम चला गया हॉलैंड में और वहां जाके मैंने ऐसा ही किया. उसके बाद न्यूज़पेपर में ऐसा एक आर्टिकल आया, पूरी रिपोर्ट उन्होंने न्यूज़पेपर में दी. और प्रभुपाद न्यूज़पेपर में हरे कृष्ण वो सारा हॉलैंड की भाषा में था तो पढ़ा नहीं है, लेकिन प्रभुपाद का उस न्यूज़पेपर रिपोर्ट में प्रभुपाद का नाम था, हरे कृष्ण मूवमेंट का नाम था. तो प्रभुपाद ने जब देखा तो प्रभुपाद बहुत खुश हुए. उन्होंने शिवानंद को लिखा कि मुझे आपने जो रिपोर्ट भेजी वो समझ तो नहीं आई लेकिन मैं समझ गया कि कहीं मेरा नाम था और कृष्ण का भी नाम था, तो निश्चित रूप से तुम्हें अब सफलता मिलेगी क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था और तुमने भी वैसा किया. और ऐसी में ही उस रिपोर्ट में था कि एक फिनलैंड के एक व्यक्ति ने उनको ज्वाइन भी कर लिया था. तो ये शक्ति होती थी. तो हम लोग इजी गोइंग लाइफ के चक्कर में कभी ना फंसे और कभी ये अपेक्षा भी ना रखें कि हम इस मूवमेंट से जुड़े हैं तो हमारा जीवन बहुत ही सुविधापूर्वक हो जाएगा. इजी गोइंग लाइफ अगर होगी तो व्यक्ति कभी प्रचार नहीं कर सकता. इजी गोइंग हम समझते हैं कि इजी गोइंग लाइफ होगी तो हम लोग बड़े आनंद में रहेंगे, लेकिन इजी गोइंग लाइफ होने का अर्थ है कि हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त नहीं हो सकते. ये एक जेल है. हम लोग कभी जेल में जाते हैं प्रचार करने तो कुछ लोग बड़े आराम से वहां मस्ती से वहां घूम रहे होते हैं, वो जो कैदी होते हैं उनकी इजी गोइंग लाइफ है, वो जूनियर कैदी को गाइड कर रहे होते हैं, चलो टॉयलेट साफ करो, चलो ये करो, उनकी इजी गोइंग लाइफ है, तो कभी वो बाहर निकलने का सोचते ही नहीं है। तो जेल में अगर इजी गोइंग लाइफ है, इसका मतलब उसका इस जेल के छुटकारा से पाने का उसकी कोई रुचि नहीं है। उसके बाद देखिए प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, अ प्रीचर मस्ट फेस मैनी इंपेडिमेंट्स। हिंदी में ऐसा नहीं है, प्रभु कह रहे हैं प्रीचर मस्ट फेस, एक प्रचारक के जीवन में अड़चनें होनी ही चाहिए, हमारे जीवन में कठिनाइयां होनी ही चाहिए, मस्ट लिखा है, ये नहीं कि कठिनाइयां आ सकती हैं, जब कठिनाइयां आए घबराना नहीं चाहिए। अगर हमारे भक्ति के जीवन में संघर्ष नहीं है, इसका मतलब हमारी भक्ति सही नहीं चल रही, ठाकुर जी की कृपा अभी नहीं हुई। हम लोग जब बोलते हैं ठाकुर जी की कृपा है, यानी कोई कठिनाई नहीं है, मतलब अभी कृपा नहीं हुई। जितनी कठिनाइयां हमारे जीवन में हैं, उसका संघर्ष करते हुए हम गुरु की आज्ञा का पालन करने का प्रयास कर रहे हैं, इसका मतलब भगवान हम पर कृपा कर रहे हैं। अ प्रीचर मस्ट फेस इंपेडिमेंट। उसके बाद वो लिखिए क्या कह रहे हैं प्रभुपाद, नॉट ओनली ही समटाइम्स कर्ज, ऐसा नहीं सोकर कोई शाप प्राप्त होते हैं, बट समटाइम्स ही मस्ट ऑल्सो सफर पर्सनल इंजरी। कितने लोग इतने यहां पे प्रचारक हैं जिनके ऊपर लोगों ने आक्रमण किया शारीरिक रूप से, किया ही मस्ट, तो वो प्रचारक प्रमाणित है जिसके ऊपर एक अभी तक शारीरिक आक्रमण हुआ है, अभी तक नहीं हुआ इसका अभी हम सही प्रचारक अभी प्रमाणित नहीं हुए। प्रभु लिख रहे मस्ट चल, इसका मतलब क्या है, हमें रिस्क लेना पड़ेगा, नो पेन नो गेन, जब तक हम दर्द नहीं सहेंगे कोई गेन होने वाला नहीं है। तो प्रभुपाद के शिष्य हैं हिज होलीनेस इंद्रदुम स्वामी महाराज, नाम सुने आपने, उनकी पुस्तक भी आती है और इंटरनेट पर भी आते हैं, डायरी ऑफ अ ट्रेवलिंग मॉन्क, बहुत ही रोमांचक, जैसे कहते हैं हेयर रेजिंग इंसिडेंट्स हैं, ऐसे ऐसे इसमें इंसिडेंट्स हैं। एक आपको थोड़ा सा बताएंगे, समय कम है, कि ये हिज होलीनेस इंद्रदुम स्वामी महाराज गए युगोस्लाविया, 1992 में युगोस्लाविया का ब्रेकडाउन हो गया था, बॉस्निया क्रोशिया सराजीवो ये सब बन गया था। तो सराजीवो में मंदिर है हमारा एक, वहां पे ज्यादातर आबादी मुस्लिम है और कुछ क्रिश्चियन है, और आपस में सिविल वॉर चल रहा था लगातार 3-4 साल तक। और वहां पर दो माताजी हैं, दो भक्त हैं, उन माताजी का नाम है जानू कन्या और हंस सहीना, दो माताएं हैं केवल, और सराजीवो में बुरा हाल है, पूरा का पूरा शहर कब्रिस्तान बना हुआ है और सारे हॉस्पिटल सारी बिल्डिंग सब टूटी फूटी, क्योंकि लगातार लड़ाई वहां पे चल रही है। तो ऐसी लड़ाई में जानू कनेका और हंस सिन्हा माताजी हैं वहां पे, वो अपने मंदिर को छोड़ के नहीं गई, और वो मंदिर में भी काफी रिफ्यूजी आकर रहते हैं, और उन मंदिर में जो रिफ्यूजी आते हैं उनका पूरा ख्याल रखती हैं, और ये क्या करती हैं बाहर निकल के लोगों से पानी और खाने की भीख मांग के किसी ढंग से अरेंज करती हैं। पानी अरेंज करने के लिए उनको बाहर निकलना पड़ता है कहीं पे, और बोल रहे हैं कि ऐसे स्थिति में जब पूरे सराजीव कोई नहाता ही नहीं है, कोई पानी भी नहीं है, ये दोनों रोज स्नान करती थी और रोज अपने फ्रेश कपड़े डालती थी और जहां संभव होता था लोगों को प्रसाद का वितरण करती थी। तो एक बार इनके पास जितना फूड स्टॉक था खत्म हो गया, तो उनको मालूम चला कि यूएन से यूनाइटेड नेशन से लोग आए हैं कुछ खाने को बांटने के लिए, तो बड़ी रिक्वेस्ट करके इन्होंने एप्लीकेशन डाले कि हम भी प्रसाद का वितरण करते हैं। तो उस ऑफिसर ने इनको 1 टन खाना दे दिया। अब उस 1 टन को खाने के लिए ले जाने के लिए व्हीकल नहीं है, तो उन्होंने बहुत बातचीत करके इस ऑफिसर से एक व्हीकल का अरेंजमेंट किया, खाना अपने यहां तक पहुंचाया। फिर पूरा साल उसका वितरण करना था, तो ये केवल थोड़ा सा खाते थे ताकि ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को वितरण कर सके, और प्रसाद वितरण करने के लिए घर घर जाके प्रसाद बांटती थी, और घर घर जाके नहीं, जहां पे बैटल फ्रंट पे जाके सैनिकों को, चाहे वो क्रिश्चियन हो चाहे वो मुसलमान हो, उनको प्रसाद बांटती थी। कितनी हिम्मत की बात है, और कई बारी फायरिंग हो रही होती उसके बीच में, रोकते भी थे सैनिक इनको, फिर भी ये रुकती नहीं थी। और इसके बीच में भी वो सोचती थी पुस्तक वितरण करना चाहिए, और पुस्तक वितरण करती थी, और पुस्तक वितरण युगोस्लाविया में पुस्तकें पहुंची तो उसको एक जगह बंद हो गई क्योंकि सब वार चल रहा था। तो जिस घर में पुस्तकें सीज हो गई थी वो घर मुसलमानों का था, जो कि इस्कॉन के बहुत विरोध में था, तो वहां जाके पुस्तकें समय समय निकालनी पड़ती थी। और कई बार जाके वहां से पुस्तकें निकालने जाती थी, वो क्या देखती थी कि प्रभुपाद की पुस्तकों को जलाकर वो हाथ सेक रहे थे आग पे, इतना गुस्सा आता था। फिर दिसंबर का महीना आया, इनको मालूम है ये मैराथन का महीना है, उनके अंदर और उत्साह हुआ कि इस मैराथन के महीने तो ज्यादा पुस्तकें बांटनी चाहिए। ऐसी स्थिति में तो उन्होंने क्या किया, जो यूएन का वो कमांडिंग ऑफिसर था उसके पास गई, उनसे मदद मांगी कि किसी ढंग से वो पुस्तकें उस घर में फंसी हुई है उसको मंदिर तक पहुंचवा दो। तो फिर बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भगवान ने उनकी मदद की, तो उन्होंने एक ट्रक पे उस ट्रंक को रखवाया और मंदिर तक वो पुस्तकें पहुंची। और फिर दिसंबर के महीने में और उत्साह से पुस्तकें बांटी और उसे जो धन इकट्ठा किया उन्होंने दिसंबर के महीने में 1993 में 10,000 देशमार्क उन्होंने इकट्ठे कर लिए। और यानी कि इमरजेंसी में उस धन को उन्होंने अपने लिए यूज कर लिया, वो धन को संभाल के रखा और स्वीडन की बीबीटी में उसको जमा कराया। तो इतना आप देखिए, दो माताओं ने ऐसा किया। और जब इंद्रदूत स्वामी महाराज 1996 में वहां पे गए, वो उन दो माताओं से मिलना चाहते थे, उनसे मिले तो उनको बहुत उन्होंने उनसे बहुत धन्यवाद दिया। तो उस समय थोड़ा युद्ध कम हो गया था, तो भक्तों ने बोला कि हाँ कि मुसलमान जनसंख्या हमारे लिए बहुत फेवरेबल है, क्यों ना हम हरिनाम निकालें। तो इंद्रदूत स्वामी महाराज उनके उत्साह को देखकर मना नहीं कर पाए, तो लगभग 60 भक्त थे, उन्होंने हरिनाम निकाला। इंद्रदूत स्वामी महाराज लिख रहे मुझे शुरू से कुछ ठीक नहीं लगा था, लेकिन भक्त लोग बहुत उत्साहित थे तो चल पड़े, तो चले गए। लेकिन उस दिन था फ्राइडे, नमाज पढ़ने का दिन था और बहुत बड़ा फेस्टिवल था। तो जब ये गए तो बिल्कुल ओल्ड सिटी के अंदर चले गए और सामने बहुत बड़ी मस्जिद थी। तो अब इंद्रदूत स्वामी महाराज बोला ठीक नहीं हो रहा, और भक्त लोग जोर जोर से कीर्तन कर रहे हैं जोर जोर से, और सामने मस्जिद में बहुत से मुसलमान हैं। तो तभी हम उसे देखते हैं कि तीन मुसलमान बड़े गुस्से में आ रहे हैं। अब इंद्रदूत स्वामी महाराज बोला कुछ ठीक नहीं होने वाला, हम कुछ नहीं कर सकते थे, वापिस भी नहीं आ सकते थे, इतना कंजस्टेड एरिया था। तो तीन लोग आए मुसलमान हट्टे कट्टे और बड़े गुस्से में आके उन्होंने भक्तों को मारना पीटना शुरू कर दिया, और उनके हाथ में खंजर थी, चेन थी, लाठियां थी, उन्होंने मारना पीटना शुरू कर दिया। कुछ भक्तों ने उनका विरोध किया, भक्तों ने उनको भी पिटाई की। तो जब ये 60 थे वो तीन थे, तो ये भक्त लोग उस पर हावी हो गए और तीनों को भगा दिया। उसके बाद 30-40 लोग और आए मुसलमान, और इस पर सब ने भक्तों की खूब पिटाई की, उनके हाथ में खंजर तक थे, भक्तों में खंजर से पिटाई की गई, खून खून हो गया वहां पे, सारा हरिनाम रुक गया। और इंद्रदूत स्वामी महाराज देख रहे थे, उनके शिष्य थे, उनके शिष्य नरसिंह कवच प्रभु, किस ढंग से उनकी पिटाई हो रही थी और कैसे सबके सब सड़क पे लेटे हैं असहाय अवस्था में, और उनको चाह कर भी उनकी मदद नहीं कर पाए। पुलिस आई, जितने भक्त उनको वापस ले गए। अब भक्त लोग वापस मंदिर में पहुंचे, कुछ भक्त है ही नहीं और पता भी नहीं वो कहां पे हैं। फोन कर करके पूछा कि सरकारी अस्पताल कहां पे हैं, तो कुछ सरकारी अस्पताल में मालूम चला यहां भक्त लोग हैं, वहां पे महाराज मिलने गए, वहां पे उनको मिलने नहीं दिया जा रहा, और वहां पे बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, पेन किलर तक भी नहीं है, और सब खून में लथपथ भक्त लोग ऐसे फर्श पे लेटे हुए हैं और वहीं पे उनका ऑपरेशन किया जा रहा है, ऐसे ही बहुत पीड़ा में, और महाराज को अंदर भी नहीं घुसने दे रहे। और फिर वहां पे फिर वही मुसलमान आए वहां पे जो थे कुछ, और महाराज कह रहे हैं कि उसमें से एक मुसलमान ने उनके ऊपर थूक दिया, माने किसी ढंग से अपने आप को साफ किया और भगवान से प्रार्थना की। धीरे धीरे भक्त लोग ठीक हुए, और फिर बाद में पुलिस ने स्टेटमेंट दी, क्षमा मांगी हरे कृष्ण आंदोलन से, क्योंकि वहां भक्त लोग निरंतर ऐसे युद्ध की अवस्था में भी प्रसाद का वितरण करते थे, हरिनाम करते थे। तो ये प्रचार है, किसने उनको ये प्रेरणा दी, केवल श्रील प्रभुपाद जी की प्रसन्नता करने के लिए। हम लोग भारत में हैं, हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, हम लोग यहाँ हरिनाम पे निकलते हैं, लोग हमारे को हार डालते हैं, हमें जूस पिलाते हैं, मिठाइयां खिलाते हैं, विदेशों में जाएंगे हरिनाम निकालते हैं, लोग अंडे फेंकते हैं, सड़े गले अंडे ऊपर से मारते हैं, गालियां देते हैं, गरम गरम पानी घेर देते हैं। तो क्या हम ऐसी परिस्थिति में हरिनाम निकालने को तैयार होंगे? क्या हमें बोला जाए कल आप हरिनाम में करते हुए पाए गए तो आपको सरकारी नौकरी से इस्तीफा देना पड़ेगा? क्या ऐसा बोला जाए कभी आप हरिनाम करते हुए पाए गए तो आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा, हम तुरंत छोड़ देंगे? लेकिन असली प्रचारक वही है कि सब विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए भी इस चैतन्य महाप्रभु के मिशन को अपने हृदय में उतारे। ये इजी गोइंग लाइफ, इस संसार में रहना है, मतलब कि हमारे बहुत लंबे प्लान्स हैं जन्म मृत्यु के चक्कर को आगे बढ़ाने के लिए। तो हम लोग देखें कि किस ढंग से हम इस श्रील प्रभुपाद जी के आंदोलन को अपने जीवन में उतारें, और हमें जो सुविधा प्राप्त हुई है हम इसको पूरा लाभ उठा सके। तो ये सारी शक्ति प्राप्त होती है अगर हम ध्यान पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अध्ययन करें और सब भक्तों से हम मैत्रीपूर्ण संबंध रखें तो हमें शक्ति प्राप्त होती है, और हम लोग ऐसा करके कृष्णा कॉन्शियस आंदोलन का अर्थ यही है कि अपना उद्धार करें और माध्यम बने दूसरों के उद्धार के लिए। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, ग्रंथा श्रीमद भागवतम की, संकीर्तन यज्ञ की, निताई गौर प्रेमानंद है।